आज जा रहे हैं मास्टर, आप थोड़े और दिन रुक जाइए। आप इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हैं? मास्टर आज ही शहर छोड़कर जा रहे थे। ये बात सुनकर कई लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। राजधानी में कोई कैलकुलेशन करने वाला रोज रोज नहीं आता था और मास्टर इतने कम दिनों में ही यहाँ से वापस जाने की बात कर रहे थे। मास्टर ने हंसते हुए कहा, मुझे और भी कई काम करने होते हैं। उनके हाव भाव किसी एक्सपर्ट के जैसे थे। वे मन से शांत दिखाई पड़ते थे, जैसे कोई बहती नदी हो जिसे पकड़ना नामुमकिन हो। वे लोगों को उदास होते देख वे बोले, मैं एक काम करता हूँ, मैं आज 5 की जगह 10 लोगों की मदद करूँगा और उनके लिए चीज़ों का कैलकुलेशन करूँगा। आप सभी जानते हैं कि कैलकुलेशन करना कितना मुश्किल काम होता है। इंसान की ताकत और एनर्जी दोनों जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है। मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही चीज़ों का कैलकुलेशन कर सकता हूँ। एक आदमी भीड़ में से चीखा, मास्टर कोई बात नहीं, अगर आप मुझे चीज़ चुनकर देंगे तो मैं बदले में आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं भी पैसे दूंगा, अगर मास्टर मेरे लिए कोई चीज़ चुनकर देंगे तो भले ही वो चीज़ कितनी भी महंगी क्यों ना हो, मैं उतने ही पैसे मास्टर को भी दूंगा। कई लोग मास्टर की बात सुनकर चिल्लाने लगे। मास्टर ने पहले भी कई लोगों को कई गुना फ़ायदा करवाया था, अगर उन्हें भी कई गुना फ़ायदा हो जाए तो उसके लिए थोड़े पैसे देने में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। आखिरकार फ़ायदा भी कई गुना होता था। मास्टर ने हाथ हिलाकर मुंह बनाया नहीं, और फिर लोगों को चुप कराकर बड़ी ही श्रेष्ठता से कहा, मैं किसी चीज़ का कैलकुलेशन पैसे के लालच में नहीं करता। अगर मुझे पैसे ही चाहिए होते तो मैं आपकी मदद क्यों करता? मैं खुद ही किसी चीज़ को चुन लेता और फिर उसे बेचकर फ़ायदा कमा लेता। क्या इस तरह से मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते? आप ही सोचिए। भीड़ उनकी बात सुनकर निस्तब्ध रह गई। हाँ, उनकी बातें गलत तो नहीं थी। वे खुद ही अपने टैलेंट से अच्छी अच्छी चीज़ें चुन सकते थे और फिर बहुत सारे पैसे कमा सकते थे, बहुत सारे पैसे कमाकर अमीर बन सकते थे। ऐसा करने में उन्हें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़ती और वे करोड़पति बन सकते थे। अपने दोनों हाथ पीछे करके वो संदीप महेश्वरी की तरह सबको समझाने लगे, मैं आप सबकी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे कितना सराहा और कितना सम्मान दिया है। मेरे लिए पैसे की कोई कीमत नहीं है, वो तो किसी बादल जैसे होते हैं, कब चले जाएं पता ही नहीं चलता। पैसे कमाना तो आसान है लेकिन दोस्ती बड़ी ही मुश्किल से मिलती है। फिर आगे बोले, मैंने आपकी मदद करने का वादा पैसों के लिए नहीं बल्कि हमारी दोस्ती के लिए किया है। अगर कोई अब भी पैसे की बात करना चाहता है तो वो मुझसे बात ना ही करे, मैं उसकी कोई मदद नहीं करूँगा। मास्टर आप तो महान हैं, हम ही बेवकूफ़ निकले, हम आपके आदर्शों की बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। मैं आज तक किसी के सामने नहीं झुका लेकिन आज मैं आपके सामने झुकता हूँ मास्टर। मास्टर की बातें सुनकर जो लोग पैसे की बात कर रहे थे उन्हें शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। देखो मास्टर की ओर देखो और फिर खुद को देखो, क्या कोई तुलना भी हो सकती थी? इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि वो मास्टर है और हम बेकार के लालची लोग। मास्टर ने आगे कहा, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई भी चीज़ चुनूं, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। कैलकुलेशंस केवल एक अंदाज़ा होता है, कभी सही तो कभी गलत हो सकता है। मैं किसी से इस बात का कोई वादा नहीं कर सकता कि मेरी चुनी उन सभी चीज़ों में खजाना ही निकलेगा। मास्टर हमें सट्टेबाजी के खतरों के बारे में पता है, आपकी कैलकुलेशन क्षमता हमसे कहीं अच्छी है और हमें आप पर पूरा भरोसा है। हमें आप पर विश्वास है मास्टर, हमें नियम पता है, किसी को भी हर बार खजाना नहीं मिल सकता, लेकिन हमें विश्वास है कि आपकी सलाह से हमें फ़ायदा ही होगा। सभी लोग एक साथ चिल्लाने लगे। मास्टर ने माहौल देख कर कहा, क्योंकि आप सभी को मुझ पर विश्वास है तो ठीक है, मैं भी कोई चीज़ चुनकर अपनी बेइज्जती करवा ही लेता हूँ, लेकिन आप में से कौन सा दोस्त पहले आगे आएगा? मैं एक ही पल में कई लोगों ने अपना हाथ उठा लिया और कुछ तो मास्टर का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए कूदने लगे। एक कैलकुलेशन करने वाले की हैसियत बहुत बड़ी होती थी, उनकी हर एक हरकत पर लोग पागलों की तरह हरकत करने लगते थे। ठीक है तुम, मास्टर ने एक आदमी की ओर इशारा किया और वो खुशी से आ गया है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मास्टर ने उसे चुना था। मैं क्या सच में मुझे ही बुलाया? मास्टर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम ही। उनकी पोशाक से लेकर तौर तरीके तक सभी से वो एक एक्सपर्ट लग रहे थे। वो आदमी खुशी से उछलता और मास्टर के सामने आ गया। शुक्रिया मास्टर, फिर बड़े ही सम्मान से उसकी ओर देखकर बोला, मास्टर मैं कौन सी चीज़ खरीदूँ? अपनी बाजू ऊपर करके मास्टर आगे बढ़े, हमें देखने दो। वे शांति से प्लेटफॉर्म पर रखी चीज़ें देखने लगे। पूरी भीड़ एकदम से शांत हो गई, सभी मास्टर को देख रहे थे, कोई भी आवाज़ निकाल कर उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। फिर वे रुके, उन्होंने एक चीज़ पर अपना हाथ रखा और उस पर हाथ घुमाने लगे जैसे ही कोई टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हों। फिर उनके पूरे शरीर को एक झटका लगा, एक मिनट के बाद ही उनके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। मास्टर फिर उस आदमी की ओर मुड़े और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है तुम ये वाली आकृति ले सकते हो। मैंने अपनी एक स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल की जिसके मुताबिक इसकी कीमत काफ़ी अच्छी है। उस आदमी ने खुशी से पूछा, ये वाली? फिर वो दौड़ते हुए आ गया है। उस चीज़ का साइज बहुत बड़ा था और उस पर बहुत ही सारी मिट्टी और कंकड़ की परत थी। इतनी चीज़ इतनी बड़ी थी कि उसका आकार दिखने में एक खम्भे जैसा हो गया था। इस तरह का खजाना साफ करना सबसे मुश्किल होता था और उसका साइज जो कि एक इंसान की लंबाई का था, उसे देखकर तो लग रहा था कि उसे साफ करने में ही कम से कम एक दो दिन लग जाएंगे। मास्टर ने सिर हिलाकर हाँ कहा। आदमी बोला, क्योंकि मास्टर ने मेरे लिए इसे चुना है तो मैं इसे ज़रूर लूँगा। फिर उसने वहाँ खड़े डीलर से पूछा, ये कितने का है? डीलर ने आगे आकर उसे देखा और फिर बोला, 50,000 रुपये। आदमी हैरान था, 50,000? ये कोई छोटी रकम नहीं थी। वो भले ही अमीर था लेकिन इतनी रकम देना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। इससे ज़्यादा तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। प्रशा जैसी मशहूर टीचर भी सिर्फ 10,000 रुपये ही कमा पाती थी हर महीने। उसे भी 50,000 रुपये जमा करने में कई साल लग जाएंगे। उसे हिचकिचाते हुए देख भीड़ में से कोई चिल्लाया, ले लो ले लो। मास्टर ने लेने का सुझाव दिया, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं ले लेता हूँ। हाँ, मास्टर की सलाह गलत नहीं हो सकती। अभी इसकी कीमत भले ही 50,000 हो लेकिन अगर इसे साफ करने के बाद ये 1,00,000 की हो गई तो तुम्हारे ऊपर तो पैसों की बरसात हो जाएगी। पिछले कुछ दिनों में तो मास्टर ने कम कीमत की चीज़ें ही चुनी थी लेकिन लगता है आज जाने से पहले वे कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए महंगी चीज़ें चुन रहे थे। कई लोग एक एक करके चिल्लाने लगे। थोड़ा हिचक कर आदमी बोला, ठीक है मैं इसे खरीद लूँगा, और बिल भरने चला गया। उस आदमी के चले जाने के बाद मास्टर दोबारा से भीड़ की तरफ देखकर बोले, बहुत अच्छे, अब दूसरा कौन आएगा? मैं। लोग फिर से हाथ खड़ा करने लगे। विपिन ने देखा कि दुकानदार भी हाथ ऊपर किए खड़ा था और मास्टर को देख रहा था। वो हाथ हिला हिला कर मास्टर का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। तुम? मास्टर ने एक और इंसान को चुन लिया था। ये इंसान बड़े ही अच्छे कपड़े पहने हुए था और बूढ़ा भी था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ही अमीर होगा। पहले की ही तरह से मास्टर ने उसके लिए भी एक चीज़ चुन कर दी, 80,000 रुपये। ये खजाना तो पहले वाले खजाने से भी महंगा निकला लेकिन उस बूढ़े आदमी ने बिना हिचके उसे खरीद लिया और वहीं के वहीं बिल भी दे दिया। ये तो वही फूलदान है जो मैंने देखा था, इसे तो केवल एक के शिल्पकार ने बनाया था। ये 80,000 रुपये का कैसे हो सकता है? मास्टर की चुनी हुई चीज़ को ध्यान से देखने के बाद विपिन को याद आया, उसे विश्वास नहीं हो रहा था मास्टर ने उस बूढ़े आदमी को इतनी बेकार चीज़ क्यों दी। माना कि उसने सभी चीज़ों को छू कर नहीं देखा था इसलिए उसे सभी चीज़ों की कीमत नहीं पता थी, लेकिन इस फूलदान के बारे में तो विपिन ने लाइब्रेरी में पढ़ा था। लाइब्रेरी गलत नहीं हो सकती। ये देखने में भले ही बड़ा दिखता हो लेकिन इसके अंदर तो सिर्फ एक पुराना फूलदान था जो कभी भी टूट सकता था, शायद सफाई के वक्त ही टूट जाए। उसकी कीमत तो 1 रुपये जितनी भी नहीं थी और इसने 80,000 रुपये दे दिए। मास्टर को कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? वो उलझन भरी नज़रों से फूलदान को देखने लगा। फिर उसने मास्टर के चेहरे की तरफ देखा। अचानक उसके दिमाग में लाइब्रेरी में एक झटका लगा और एक किताब आ गई। उसके कवर पर अमित लिखा था। कहीं ये किसी तकनीक या पोज का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं? लाइब्रेरी में तो किताब तभी आती थी जब कोई किसी पोज या तकनीक का इस्तेमाल कर रहा होता था। हो सकता है कि वो अभी कोई तकनीक लगा रहे हों। हैरानी से विपिन ने उस किताब को खोला। ये एक नज़र डालकर ही विपिन के चेहरे के भाव ही बदल गए। वो कुछ अजीब नज़रों से मास्टर की ओर देखने लगा।